ओम शांति। हम सभी के बीच आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी पधारे हैं। हम सभी अव्यक्त फरिश्तों की तरह दीदी का स्वागत करेंगे। दीदी डबल डॉक्टर है, आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी की है और बाबा के ज्ञान में रूहानी डॉक्टर भी हैं। आप 1974 में बाबा का परिचय मिला आपको, और 1989 में आपने समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। 1991 में ग्लोबल हॉस्पिटल में आप चिकित्सा अधिकारी के रूप में आए, और 2000 से दादी प्रकाशमणि जी, जो कि हमारी पूर्व मुख्य प्रशासिका रही, कईयों ने दादी को देखा भी होगा और कईयों ने दादी को फोटो में वीडियो में भी तो देखा होगा ना, तो दादी के साथ आप 2007 तक रही। आप महिला प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इसीलिए जैसे आज बाबा ने वंदे मातरम कहा है, तो आपने भी नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, और अभी भी जैसे गवर्नमेंट नई नई योजनाएं लाती है तो उनके साथ आप भी महिला प्रभाग में अपनी सेवाएं करती रहती हैं। साथ ही साथ देश विदेश में भी आपने बाबा के ज्ञान का प्रकाश फैलाए हैं। तो आज हम डॉक्टर सविता दीदी से सुनेंगे अव्यक्त फरिश्ता स्थिति से मनसा सेवा कैसे करें। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। जब हम बाबा की यादों में बैठे होते हैं, यानी आवाज से परे होते हैं, तो फिर आवाज में आना सहज लगता है। वो अव्यक्त स्थिति ही प्यारी लगती है, और कोई ज्यादा बात करते हैं तो भी फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यही बाबा हमें कहते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी हो कि जब चाहे हम आवाज में आ जाएं और जब चाहे हम आवाज से परे हो जाएं। एक सेकंड मिनिमम समय होता है, एक सेकंड। एक सेकंड में हम आवाज से परे, और एक सेकंड में अगर कर्म में आना है तो कर्म में आ जाए। इतना हमारा न्यारेपन का अभ्यास हो, इसको हम कहते हैं फरिश्ता। फरिश्ता माना उड़ती कला वाले। तो जो उड़ते हैं उन्हें कितना समय लगता है, जैसे मन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, सेकंड ही कहेंगे, सेकंड से भी कम समय। तो वही गति हमारे फरिश्ता स्वरूप की है। अव्यक्त स्थिति माना अशरीरी स्थिति या लाइट स्वरूप की हमारी स्थिति, जो बाबा हमें फरिश्ता या लाइट के कार्ब वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ये अभ्यास हमारा कितना है ये हमें चेक करना है कि कोई बंधन हमें खींचता तो नहीं। हम न्यारे होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं। फरिश्ता का अर्थ ही है जो सर्व बंधनों से मुक्त, वही उड़ सकता है जिस पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। जो बोझ वाली चीज है वो क्या होती है, नीचे आ जाती है। ऊपर कौन सी चीज जाएगी, जो हल्की होगी। तो जो हल्का है वही उड़ सकता है, और नहीं तो फरिश्ता बनना संभव नहीं है। तो किस किस प्रकार के बोझ हमें नीचे ले आते हैं, हमें फरिश्ता नहीं बनने देते। तो सबसे तो ज्यादा बड़ा बोझ हम प्रवृत्ति में रहते हैं, हमारी कई जिम्मेवारियां हैं, चाहे वो बच्चों की है, चाहे जो काम बिजनेस हम करते हैं उसकी है, चाहे और भी कई प्रकार की, तो जिम्मेवारियों का बोझ जिसको बाबा कहता है मैं और मेरेपन का बोझ। हम ये समझ लेते हैं ये मेरी जिम्मेवारी है, तो मेरी है। जब हम बाबा के बन गए तो हमने मेरे को क्या कर दिया क्या? हाँ, या सिर्फ सुनने के लिए खुश होते हैं हम? लेकिन जब हमने सचमुच मेरे को तेरे में बदल दिया कि मेरी नहीं, किसकी जिम्मेवारी है, हमने अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को सौंप दी, तो हम हल्के हो गए। बाबा ने खुद हमें ऑफर किया है कि अपने बोझ मुझे दे दो, मैं आया ही हूं आपको इन सब बंधनों से मुक्त करने के लिए। बाबा ने कहा दो युगों से आप बच्चे जो हैं ये बोझ उठा रहे हो, इन दुखों में जी रहे हो, और अब बाप आया ही है इसलिए। तो फिर अगर हमने बाबा को दे दिया तो फिर हम निश्चिंत, भले हम कर रहे हैं लेकिन अमानत है, ट्रस्टी है, निमित्त है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, मेरा नहीं है। जैसे मेरापन होता है ना तो बोझ होता है, किसी के ऊपर छोड़कर हम करते हैं तो हल्के होते हैं। एक छोटी सी कहानी आती है कि एक राजा अपने गुरु के पास गया। वो अपने राज्य से बहुत परेशान था क्योंकि वो राज्य में कोई ना कोई समस्या हर दिन होती थी, तो उसको राज्य चलाना बहुत भारी लग रहा था, चिंता में रहता था, रात को नींद भी नहीं आती थी। तो उसने जाकर वही कहा अपने गुरु को कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, चिंता में रहता हूँ, ये राज्य अब मैं नहीं संभाल सकता, तो मैं इस राज्य को छोड़ना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ राय दीजिए, मैं आपके पास इसके लिए आया हूँ। तो उसने कहा कि राजन सिंपल सी बात है कि अगर तुम नहीं संभाल पा रहे हो तो अपने बेटे को दे दो, तो आपका उत्तराधिकारी तो आपका बेटा ही है ना, तो अब आपकी आयु हो गई है और आपसे नहीं संभल रहा। तो उसने कहा नहीं, बेटा तो बहुत छोटा है, वो तो नहीं संभाल सकता, अभी वो संभालने योग्य नहीं है। तो उसने कहा अच्छा, अगर बेटा नहीं संभाल सकता है तो अपना राज्य मुझे दे दो। उसने कहा हाँ, ये संभव है कि मैं आपको दे देता हूं। तो उसने कहा अच्छा, मैं तुम्हारा राज्य ले लूंगा तो फिर तुम क्या करोगे? उसने कहा कि मैं कुछ नौकरी कर लूंगा, आपके ही राज्य में मैं कुछ नौकरी कर लूंगा। तो उसने कहा कि नौकरी भी जब करते हैं तो उसमें भी कुछ धन तो देना होता है ना। तो उसने कहा वो सारा धन जो आपके राज्य कोष का है वो भी मेरा हो गया, तो फिर आप नौकरी करोगे तो नौकरी करके भी क्या करोगे? उसने कहा फिर जो आप कहेंगे वो मैं कर लूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरे कहने से अब तुम राज्य संभालो ना, वो तुम्हारा नहीं है, अब वो मेरा राज्य है, तुम राज्य संभालो और फिर हर महीने तुमको मैं जो तुम्हारा बनेगा वेतन वो मैं दे दूंगा। तो उसने कहा ये भी मुझे स्वीकार है। और फिर अब वो महल में आया और अब वो राज्य संभालने लगा कि मेरा राज्य नहीं है, गुरु जी का राज्य है। एक महीना हो गया लेकिन अब उसको रात को बहुत आराम से नींद आती थी क्योंकि जो भी ऊंच नीच है या जो भी कुछ हो रहा है वो सब किसकी जिम्मेवारी है? गुरु जी की जिम्मेवारी है। अब मेरी जिम्मेवारी तो है नहीं, मुझे तो सिर्फ काम करना है। और इसीलिए वो हर बात के लिए उनके लिए ही कह देता था, अगर कोई भी समस्या पैदा करने की कोशिश करता तो वो कहता उनसे बात करो, अभी मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ काम कर रहा हूं। तो एक महीने के बाद फिर गुरु जी ने उसको बुलाया उसने गुरु जी ने यही कहा कि मैं महल में आकर नहीं रहूंगा, मैं तो अपने स्थान पर ही रहूंगा, महल में तुमको ही रहना है। और फिर उन्होंने उसको बुलाया और पूछा अब कैसा लग रहा है, तो उसने कहा गुरु जी अभी तो मैं बहुत हल्का हूं, अभी मुझे अच्छी नींद आती है। तो गुरु जी ने कहा काम तो अभी भी वही कर रहे हो, पूरा राज्य का काज संभाल रहे हो, लेकिन जैसे ही मेरापन छोड़ दिया, उसको तेरा कर दिया, तो क्या हो गए, हल्के हो गए, है ना। तो बाबा भी हमसे यही कराता है, कुछ छुड़वाता तो नहीं है, वही घर परिवार में हम रह रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं, लेकिन परिवर्तन क्या किया, सिर्फ किसका है, बाबा का है। और हम निमित्त हैं, हम ट्रस्टी हैं, तो इसीलिए तन मन धन सब कुछ तेरा, फरिश्ता बनना माना तेरा तेरा करना, इसको बाबा कहते हैं तेरा तेरा करना माना तर जाना। तो तन भी मेरा नहीं, तन भी मेरा नहीं, यानी तन बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है। आज जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, वो सब कर्मेंद्रियों से हम बाबा की ही सेवा करें। और मानो तन में कोई बीमारी आती है, कोई हिसाब किताब आता है, तो उस हिसाब किताब से भी न्यारे, वो भी जिम्मेवारी किसकी है, बाबा की अमानत मेरे पास है, तो अमानत को संभालना मेरा फर्ज है। ये शरीर भी बाबा की अमानत मेरे मुझ आत्मा के पास है। तो ऐसे नहीं कि बीमारी में हमें इलाज नहीं करना है या अपनी संभाल नहीं करनी है, करनी है, क्योंकि इस शरीर से हमको बाबा की सेवा करनी। तो अपने देह में भी मोह नहीं, देह में भी मेरापन नहीं। जैसे हम कहते हैं मृत्यु का भय क्यों होता है, फरिश्ता कोई शरीरधारी तो नहीं है ना, फरिश्ता कौन है, लाइट के शरीर वाला, फरिश्ता माना ही डबल लाइट, हम सुनते हैं ना फरिश्ता माना, बाबा ने हमें बताया फरिश्ता माना डबल लाइट, तो एक लाइट तो आत्मा की है और दूसरी लाइट ये शरीर भी पांच तत्वों का बना हुआ जो भौतिक शरीर है, उसके अंदर ही हमारा लाइट का शरीर भी है जो सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म काया हम सूक्ष्म वतन में भी अनुभव करते हैं। तो वो लाइट का शरीर, वो डबल लाइट, एक आत्मा लाइट और फिर शरीर भी लाइट, और तीसरा लाइट माना पुराने विकर्मों के हिसाब किताब से भी लाइट, जो भी 63 जन्मों के हिसाब किताब है उसका भी तो बोझ है ना, पाप कर्मों का बोझ है आत्मा के ऊपर, तो उस हिसाब किताब से भी लाइट, या हम कहेंगे स्वभाव संस्कार के बोझ से भी लाइट, तब हम कहेंगे कि फरिश्ता स्थिति है। तो ये पुरुषार्थ करने से ही हम अनुभव कर पाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में हमने सुना है कि बाबा को जब पता चला कि मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में है, संदेशी ने आकर के बताया बाबा को कि बाबा जो मैंने वतन में बाबा देखा और जो मैं यहाँ बाबा देखती हूँ उसमें फर्क है। वतन में बाबा देखा वो तो बहुत लाइट वाला है और यहाँ जो बाबा है उसमें उतनी लाइट नहीं है। तब बाबा को समझ में आया कि मेरी तपस्या में अभी कमी है, तो मेरा संपूर्ण स्वरूप अभी इमर्ज नहीं हुआ है। तो बाबा ने तपस्या के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू किया और तभी से बाबा 2:30 बजे उठ करके तपस्या करते थे, क्योंकि बाबा को पता था कि सारे दिन का जो समय है वो तो यज्ञ कारोबार में, बच्चों की सेवा में चला जाता है, तो मेरी अपनी तपस्या का समय कौन सा है, वो अमृत वेले का समय है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि रात्रि को जाग करके भी तपस्या करो। तो जब हम अटेंशन देंगे, क्योंकि हमें 63 जन्मों से देह अभिमान में रहने की आदत है, तो हम देह अभिमान में तो सहज ही रहते हैं, देह का भान रहना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर हमें देही अभिमानी अपनी अव्यक्त स्थिति को अनुभव करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। रोज बाबा हमें मुरली में कहते हैं, ये कौन सी मुरली ऐसी नहीं होती जिसमें बाबा हमें कहते हो कि ना कहते हो कि आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, क्योंकि भूल जाते हैं, बार बार हम देह अभिमान में आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा कि जो अपना लाइट स्वरूप का अनुभव है, इस अनुभव को बढ़ाना है। तो जब चाहे कर्म में आए, क्योंकि कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म भी कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है। साकार रूप में तो कर्म करते ही है ना, लेकिन साकार रूप में होते हुए भी ये समझना कि मैं फरिश्ता कर्म कर रहा हूं, लाइट के शरीर से मैं कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं ना, फरिश्ता है तो ये कहने में आता है। तो सोचो ऐसा पुरुषार्थ है हमारा, फिर केवल स्वयं को फरिश्ता नहीं समझना, लेकिन जो हमारे संपर्क में आती हैं आत्माएं, उनको भी फरिश्ता रूप से देखना। तो फरिश्ता कैसा होगा, फरिश्ता कैसा होगा, फरिश्ते के स्वभाव संस्कार कैसे होंगे, स्वरूप कैसा होगा। तो बाबा कहता है आपके फरिश्ते के फीचर्स, आपका फ्यूचर बताएं। फरिश्ते के फीचर्स कैसे होंगे, फरिश्तेपन के फीचर्स कैसे होंगे, सोचो। जो फरिश्ता होगा उसके फीचर्स में क्या दिखाई देगा। फीचर्स माना नैन नक्श बोलते हैं ना, चेहरा, जिसको बाबा कहता है आपके चेहरे से क्या दिखाई दे, क्या दिखाई दे, क्या अनुभव हो जो आपके संपर्क में आए, क्या अनुभव हो उसको, क्या अनुभव, शांति का अनुभव हो, रूहानियत का अनुभव हो, पवित्रता का अनुभव हो, फरिश्ते तो पवित्र होंगे ना, फिर संतुष्टता का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो, यानी उस आत्मा को जो अपने जीवन में चाहिए वो आपसे अनुभव हो, आपके फीचर से उसको दिखाई दे। और वो खुद कहते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अनुभव होता है, बाबा के कई बच्चों से ऐसा अनुभव करते हैं कि आपसे हम मिलते हैं तो जैसे मन शांत हो जाता है, आपसे हम बात करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, कोई बात का दुख भी होता है तो जैसे हमारा दुख दूर हो गया। तो ये हमारी वो रूहानियत की शक्ति, जो हमारी अव्यक्त स्थिति का प्रभाव है वो उन पर पड़ता है, और जो हमारे प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हैं। पर ये कब अनुभव होगा, जब हमारा वो स्वरूप होगा। अगर हमारा ही स्वरूप नहीं है, मैं ही अशांत हूं, हो सकता है, परिस्थितियां तो हमारे सामने भी आती हैं, समस्याएं तो हमारे सामने भी आती हैं, क्योंकि हमने माया को चैलेंज किया है। तो बाबा कहते हैं ना, माया को चैलेंज किया है तो फिर माया आकर के अपना पेपर तो लेगी, सामना तो करेगी। तो अगर हम उन परिस्थितियों में उससे ऊपर नहीं उठ पाते, हम ही शांत नहीं है, हम ही संतुष्ट नहीं है, हम ही सुखी नहीं है, तो हम किसी को क्या अनुभव कराएंगे, दे कौन सकता है, अनुभव कौन करा सकता है। तो जब कोई भी परिस्थिति हो, उतार चढ़ाव तो होंगे ना, लेकिन कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, फरिश्ता माना उड़ती कला वाला, पंख दिखाते हैं ना फरिश्तों को, तो पंख दिखाने का मतलब क्या है, कोई सचमुच कोई दो पंख थोड़ी निकले हुए होते हैं। पंख दिखाने का मतलब है ज्ञान और योग के पंखों से उड़ सकते हैं, यानी समय परिस्थिति आई, समस्या आई, ज्ञान यूज किया, योग की पावर यूज की और परिस्थिति से पार हो गए, माना उड़ गए। या उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले, तो उड़ना माना ऊपर जाना, जो उड़ने वाला होता है वो कहाँ जाता है, जो ऊपर जाएगा, जैसे हम देखते हैं एरोप्लेन ऊपर उड़ता है तो नीचे की जो भी पहाड़ है, नदियां हैं, बाधा है, कोई भी ट्रैफिक है, कुछ भी है, उसके लिए उस कोई मायने नहीं रखता। यानी जैसे उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर है कि वो सब चीजें, ऐसे ही फरिश्तों की स्थिति है कि इतनी ऊंची स्थिति है मन की, इतनी ऊंचाई पर है कि नीचे की संसार की जो परिस्थितियां है वो परिस्थितियां लगती नहीं है, जैसे है ही नहीं। मनोरंजन का खेल अनुभव होगा, अगर होगा भी तो जैसे कि सहज पार करते हुए उनको चले जा रहे हैं। तो देखो अपने आप को कि वो मन की स्थिति है हमारी, तो हम कहेंगे कि हमारी वो फरिश्ता स्टेज का अनुभव हम करते हैं, वो उड़ती कला का हम अनुभव करते हैं। उड़ती कला का यादगार, जो फरिश्ता स्थिति का यादगार है, हम देखते हैं ये विदेशों में बहुत है। भारत में जो यादगार है वो देवी देवताओं का है, क्योंकि भारत में देवी देवता हुए हैं, सतयुग त्रेता भारत भूमि पर हुए। तो आज हम जो भी याद करते हैं, जो भी सेवा की संगम युग पर, उसकी यादगार उस रूप में है। लेकिन क्योंकि विदेश तो देवी देवताओं की भूमि नहीं रहा, विदेश तो द्वापर युग के बाद ही मर्ज हुआ, आज जो भी और देश हैं, तो वहां पर भी सेवाएं तो हुई ना। बाबा के बच्चे पहुंचे, उन्होंने सबका कल्याण किया, फरिश्ता माना ही क्या, संदेश वाहक, मैसेंजर बोलते हैं ना, संदेश देने वाले। तो बाबा का संदेश तो विश्व की सब आत्माओं तक गया, तो फिर उन्होंने किसे देखा, किस रूप में बाबा के बच्चों को अनुभव किया, उन विदेश की आत्माओं ने जिस रूप में अनुभव किया वो फरिश्ता रूप, कि ये एंजल्स हैं हमारे लिए, है ना, फरिश्ते आए हैं हमारे लिए। फरिश्तों को क्या मानते हैं, सहयोग देने वाले, कि मुसीबत में जो है वो फरिश्ता आया और उसने हमारी मुसीबत को दूर कर दिया और हमें बिल्कुल मुसीबत से बाहर निकाल दिया। तो ऐसे ऐसे अनुभव उन आत्माओं ने किए, तो जो यादगार बने वो फरिश्ते रूप की। तो आप वहां पर कहीं भी जाएंगे, बहुत स्थानों पर विदेश में जाना हुआ, तो हमने देखा कि वहां की जो भी प्रमुख इमारतें हैं, यहां तक कि जो गवर्नमेंट की भी बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, वहां पर फरिश्ते बने हुए होते हैं। और अगर स्टैचू भी, मेन स्टैचूज भी होते हैं वहां, तो फरिश्तों के स्टैचूज होते हैं, इतना ज्यादा। और चर्च में भी, कोई भी चर्च में भी जाएंगे तो वो फरिश्तों की ही सारी पेंटिंग्स होंगी, या इसी तरह के कोई ना कोई वहां बने हुए होते हैं स्थान। तो इतना यादगार है, तो इसका मतलब फरिश्ते रूप में हमने समस्त विश्व की आत्माओं की सेवा की है, बाबा के बच्चों ने सेवा की है। तो जैसे कहा ना कि फरिश्ते स्वरूप द्वारा मनसा सेवा, फरिश्ता स्वरूप हमारा सूक्ष्म स्वरूप है, तो हम सूक्ष्म स्वरूप के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। बाबा इसको कहते हैं अंतःवाहक शरीर, अंतःवाहक शरीर के द्वारा हम यहां बैठे हुए विश्व में कहीं भी सकाश दे सकते हैं, यानी हमारे फरिश्ता रूप के द्वारा उड़कर हम कहीं भी जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? सभी मनसा सेवा करते हैं ना हम, तो भले ही मन माध्यम है, मनसा सेवा का माध्यम तो हमारा मन ही है ना, तन मन धन की हम बात करते हैं। तो जो सेवा हम मन के द्वारा करते हैं, वो ऐसे महसूस करें कि जिस समय जहां आवश्यकता है, अब विश्व में बहुत जगह हमारी सेवाओं की आवश्यकता है, हम देखते हैं कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं भूकंप आ जाता है, समाचार तो सुनते हैं ना हम, कहीं बहुत बड़े बड़े समुद्री तूफान आ जाते हैं, या आज इतने हॉस्पिटल हैं उसमें इतने दुखी रोगी बीमार आत्माएं हैं जो भगवान को याद करते हैं, अपनी बीमारी से मुक्ति की कामना करते हैं, जो भी विश्व की दुखी अशांत आत्माएं हैं उनके प्रति, या भक्त भक्त आत्माएं हैं, आज कितनी भक्ति करते हैं मनुष्य, तो किस भाव से भक्ति करते हैं, किस भाव से भक्ति करते हैं, इसी भाव से भक्ति करते हैं ना, कि हमें भगवान से सुख शांति मिल जाए, हमारे दुख रोग कष्ट दूर हो जाए। तो कौन निमित्त है, किसको निमित्त बनाया बाबा ने? हम बाबा के साथ, बाबा विश्व कल्याणकारी है तो हम बाबा के बच्चे मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं। बाबा ने हमें भी वरदानी मूर्त महादानी मूर्त बनाया है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम समस्त विश्व की आत्माओं को सकाश दें। जिसको शांति चाहिए उसे हमसे शांति मिले, जिसको सुख चाहिए उसे उसको हमसे सुख की अनुभूति हो, जिसको खुशी चाहिए, शक्ति चाहिए, जो जिसकी आवश्यकता है, या कोई बीमारी से मुक्त होना चाहता है, स्वस्थ होना चाहता है, तो वो भी हम सहयोग देते हैं मनसा सेवा के द्वारा। बीमार जो व्यक्ति है उसकी भी तो हम सेवा करते हैं ना, उनको भी हम जो दुआएं देते हैं उसके द्वारा उन्हें अपनी बीमारी में भी मदद मिलती है, वो हिम्मत मिलती है। तो सभी आत्माओं को हिम्मत, उमंग, उत्साह, स्नेह, सहयोग का अनुभव कराना। तो फरिश्ता ये नहीं कि कोई मुझे प्यार दे रहा है तो मैं उसको प्यार दे रही हूं। साधारण मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, कोई मेरे लिए करता है तो हम उसके लिए करते हैं, लेकिन फरिश्ता माना कोई करे या ना करे, फरिश्ता माना सदा दाता है वो। मनसा सेवा हमारी तभी होती है जब हम सदा दाता के रूप में है, सदा ही शुभ भावना शुभ कामना रखते, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं। ये नहीं कि इसका मेरे से स्नेह है या इनकी मेरे प्रति नेगेटिव भावना है, या कई बार कोई हमारी इंसल्ट कर देता है, होता है ना, कोई ऊपर नीचे कर देता है व्यवहार में, कोई भी ऐसी बातें जो दुनिया में हमारे सामने आती रहती हैं, उन सब के होते हुए भी मुझे स्नेह देना है, मुझे सहयोग देना है, सबके प्रति मेरी शुभ भावना है। ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है, क्योंकि सामान्यता ऐसा होता है कि जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, हमारे साथ स्नेह रखते हैं, हमें सहयोग देते हैं, उनके प्रति नेचुरल हमारा भी उसी प्रकार का व्यवहार होता है, पर जो थोड़ा सा भी हमारे विरोध में आते हैं या जिनसे हमारा टकराव होता है, क्योंकि हम सभी का हिसाब किताब है इस दुनिया में, तो वो हिसाब किताब भी हम आत्माओं को चुपटू करने हैं। तो अगर 90% स्नेही सहयोगी होंगे तो 10% ऐसे भी होंगे जो कोई ना कोई परीक्षा के निमित्त हमारे लिए बनते ही हैं। तो फिर उन आत्माओं के प्रति विशेष मेरा अटेंशन चाहिए कि उनके प्रति भी मेरी सदा स्नेह की भावना हो, सदा दातापन की भावना हो, तब हम मनसा सेवा कर पाएंगे। तब जिस आत्मा को जो अनुभूति हम कराना चाहते हैं वो अनुभूति हम करा पाएंगे। और बाबा हमें कहता है कि ये अंतिम समय की सेवा है, जो सूक्ष्म सेवाएं हैं, अभी भी हम स्थूल सेवा करते हैं, यानी हम वाचा सेवा भी करते हैं, हम यज्ञ सेवा भी करते हैं, और भी वाणी के द्वारा जो अनेक स्थानों पर जाकर के हम सेवा करते हैं, लेकिन जो मनसा सेवा है वो सूक्ष्म सेवा अंतिम समय की सेवा है हमारी। और वो सेवा हम तब कर पाएंगे जब हमारी मनसा पावरफुल होगी। अगर छोटी छोटी बातों में हम अभी भी व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, या हम कहेंगे कि बहुत विस्तार में चले जाते हैं, बातों के विस्तार में चले जाते हैं, या जो भी हमारे कार्य हैं वो कार्य का भी बहुत विस्तार है हमारा, तो इस दुनिया के जो हमारे स्थूल कारोबार हैं स्थूल कारोबार से जब तक न्यारा होकर के, क्योंकि अगर मन उसमें लगा हुआ है, या कईयों का वाणी का बहुत होता है ना, बोलने की बहुत आदत होती है, अंतर्मुखी नहीं बाह्य मुखी ज्यादा होते हैं, तो हमारी शक्तियां किस में जा रही हैं, उन बातों में ही खर्च हो जाती हैं, तो हम लाइट हाउस नहीं बन पाते। फरिश्ता माना लाइट हाउस माइट हाउस, जैसे लाइट हाउस होता है एक स्थान पर होते हुए माइलों तक उसकी रोशनी जाती है, कितना भी मील दूर जहाज हो उसे पता चल जाता है कि किनारा यहां पर है, क्योंकि वो लाइट हाउस फ्लैश करता है, वो रोशनी वहां तक जाती है। तो हमारी मनसा भी इतनी पावरफुल हो कि हम एक स्थान पर हैं, लेकिन उस स्थान पर होते हुए भी विश्व के किसी भी कोने में कोई आत्मा है जिसे हम सहयोग देना चाहते हैं, तो हम उसे सहयोग दे पाए। तो फिर ये हमारा अटेंशन होना चाहिए कि मन सहज एकाग्र हो जाए। मनसा शक्ति कैसे बढ़ती है? एकाग्रता से बढ़ती है। एक शुद्ध संकल्प में मन स्थित हो जाए तो वो भी अभ्यास है। शुद्ध संकल्प तो बाबा ने हमें बहुत दिए हैं ना, जो भी हमारे स्वमान है वो हमारे श्रेष्ठ संकल्प हैं, शुद्ध संकल्प हैं। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्थिति में स्थित होना, या मैं ईश्वरीय संतान हूं और बाबा के साथ सर्व संबंध में मैं आत्मा बाबा के स्नेह का अनुभव करते हुए विश्व की सब आत्माओं को भी उस स्नेह का अनुभव करा रही हूँ, रूहानी स्नेह का अनुभव करा रही हूँ। माना कोई भी एक शुद्ध संकल्प हमने लिया और मन लंबे समय तक उस संकल्प के अनुभव में रहे, इधर उधर नहीं जाए। कई बार हम कैसा योग करते हैं कि हम बाबा के पास गए, परम धाम में बीज रूप स्थिति का अनुभव हम करना चाहते हैं, एक मिनट हम परम धाम में टिके और दूसरे मिनट कोई बात हमें खींचकर नीचे ले आई, फिर हम कोशिश करते हैं वापस ऊपर जाने की, फिर मुश्किल से कुछ मिनट ऊपर टिके और फिर इसको हम एकाग्रता नहीं कहेंगे, है ना। योग जरूर कर रहे हैं हम और उस योग का हमें अनुभव भी होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। जो हमें शांति का अनुभव होना चाहिए, बाबा से शक्ति का अनुभव होना चाहिए, वो होगा, लेकिन पावर नहीं बनेगी उसकी। जो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का हमें अनुभव होना चाहिए, जो लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो ये जब तक हम अटेंशन देकर उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो पावरफुल स्थिति हम नहीं बना पाएंगे। तो मनसा एकाग्रता का अभ्यास हर दिन हमें करना है, जिसको बाबा कहता है योग अग्नि प्रज्वलित करनी है, या ज्वालामुखी योग, साधारण योग नहीं। जो हम योग करते हैं वो साधारण योग करते हैं, भट्टी में हम क्यों आते हैं? भट्टी में आने का अर्थ क्या है कि हमें वो वातावरण मिलता है कि हम ज्वालामुखी योग का अनुभव करें, पूरी एकाग्रता वाला हम योग कर सकें, क्योंकि यहाँ पर हम सभी बातों से सहज न्यारे हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुक्त है ना सभी बातों से, घर गृहस्थी से भी मुक्त हैं, नौकरी धंधे से भी मुक्त हैं और बाकी समस्याओं से भी मुक्त हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर तो पूरी तरह से हल्के हैं, फरिश्ता स्थिति का अनुभव होता है नहीं होता, मधुबन में आए हैं तो क्या कहेंगे, होता है ना। तो यहाँ हम वो स्थिति, जो योग में जितनी ऊंची स्थिति का हम अनुभव करना चाहें, जितनी पावरफुल स्टेज हम अपनी बनाना चाहें, उतनी पावरफुल स्टेज हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो वो पावरफुल स्टेज से फिर हम सेवा करें। आज मानो समझो कहीं भूकंप आ जाता है तो दुनिया में सभी आत्माएं, विश्व की सभी आत्माएं सहयोग करती हैं, सभी देश जो भी स्थूल सामग्री चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, शेल्टर चाहिए या दवाइयां चाहिए, वो सब भिजवाते हैं, प्लेन के प्लेन भर करके उन लोगों के लिए भिजवाते हैं, क्योंकि कईयों के घर जो हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, उनको रहने का स्थान ही नहीं होता है। तो वो मदद तो वो सब कर सकते हैं, लेकिन उन आत्माओं को जो लॉस हुआ, उसके मन पर जो असर आया, या कहें कि जो दुख है उनका, उस दुख से राहत कौन दिला सकता है? वो पावर बाबा ने हमें दी है कि वहां पर यदि हम ये अपनी सकाश देते हैं कि उनमें वो हिम्मत आए, उनमें वो आशा, आशा उमंग सह चाहिए ना उन्हें उस समय, पूरा ही निराश होते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं, कुछ अपनों को भी खो चुके होते हैं, जो बच जाते हैं उनको अपने के अपने लोगों को खोने का भी दुख होता है। तो उनको हर दिन हम उस स्थान पर जाकर के वो अनुभव कराएं। तो कई सचमुच ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई फरिश्ते हमारे पास आए और वो हमें ये दे करके गए, हमें ये अनुभव करा करके गए। बाबा कहते हैं अगर हमारी पावरफुल स्टेज होगी तो वो साक्षात अनुभव करेंगे। जैसे हम बाबा के बच्चे भी जब ज्ञान में आए, तो आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनको ज्ञान में आने से पहले ही कोई साक्षात्कार हुआ होगा। कई लोगों को ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए होंगे, देते हैं ब्रह्मा बाबा पहले दिखे बाद में फिर ज्ञान में आए हैं, कोई यहाँ इस सभा में जिनको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ? हाथ तो उठा रहे हैं, खड़े हो जाएं, देखें कितने हैं। देखिए इतनी छोटी सी सभा में करीब 50 भाई बहने हैं जिनको ज्ञान में आने से पहले बाबा का साक्षात्कार हुआ। बैठिए, तो आज भी वो अव्यक्त फरिश्ता रूप में बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं। तो क्यों हुआ होगा? जरूर वो भगवान को हम पुकारते हैं, उनको याद करते हैं, कोई ना कोई हमारे जीवन की कमी है जिसे हम भगवान से दूर करना चाहते हैं, और बाबा हमारी भावना को पूरा करते हैं, और फिर वो हमारा हमारे गाइड भी बनते हैं कि कैसे हम ज्ञान में आए और कैसे बाबा से हम सर्व प्राप्तियां ले, बाबा के वर्षे के अधिकारी हम बने। तो आदि में भी यही हुआ, जब ओम मंडली बनी तभी भी क्या हुआ, जो भी हमारी दादियां आई घर बैठे उन्होंने देखा ब्रह्मा सो कृष्ण, ब्रह्मा भी दिखाई देते थे तो साथ में कृष्ण भी दिखाई देते थे, और ज्ञान तो था नहीं, सब साक्षात्कार से ही आए। बाबा के पास जब आए तो सब कैसे आए? बाबा कहते हैं आदि सो अंत होने वाला है, तो अंत में भी ज्ञान सुनाने का पहले तो ज्ञान ही नहीं था, अंत में ज्ञान की कमी नहीं होगी, ज्ञान तो पूरा एकदम रिफाइन है, लेकिन ज्ञान सुनाने की परिस्थितियां नहीं होंगी। अब विनाश की स्थितियों में, अब कोरोना आ गया मानो तो क्या हुआ? चलो उस समय तो मोबाइल चालू थे, नेट चालू था, तो घर बैठे ही हमने जूम पर ज्ञान सुन लिया, तपस्या कर ली, है ना। लेकिन जब विनाश, जब रियल विनाश होगा, उस समय तो ये सब भी साधन काम करेंगे? बाबा कहते हैं ये नहीं, आपका कौन सा सिस्टम काम करेगा? वायरलेस काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा? वॉइसलेस स्थिति हमारी काम करेगी। तो फिर यही सेवा होगी कि घर बैठे हम जो भी आत्माएं जहां भी हैं और उन्हें जो भी सहायता की आवश्यकता है, हम मनसा के द्वारा, ये जो हमने कहा अपने अंतर्वाहक सूक्ष्म शरीर के द्वारा, हम उन आत्माओं को सहयोग दे सकेंगे। तो हमें अभी से ही अभ्यास करना है। तो जो मैंने कहा कि मानो भूकंप आया या जो युद्ध चल रहा है, युद्ध से भी जो प्रभावित आत्माएं हैं उनकी भी मन की स्थिति ऐसी होती है, उनको भी हमें सहयोग देना है। तो रोज जब हम अमृत वेले योग करते हैं, या रोज जब हम शाम को योग करते हैं, विशेष रूप से पावरफुल योग, साधारण योग नहीं, कर्म योगी तो हम सारा दिन होते हैं, क्योंकि हम बाबा के साथ ही कर्म करते हैं, करण करावनहार बाबा है, और हम भले ही परिवार में रहते हैं लेकिन क्या समझते हैं, वो घर मेरा क्या है, सेवा स्थान है, घर समझते हैं, लौकिक घर समझते हैं या बाबा का सेवा स्थान है, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? घर कौन सा है? घर तो हमारा मधुबन है या फिर परम धाम है। और बाकी तो बाबा ने वहां किस लिए रखा है, सेवा के लिए रखा है। तो हम तो बाबा की सेवा कर रहे हैं ना, चाहे अपने लौकिक स्थान पर भी रहते हैं तो भी हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं। तो हम कर्म योगी तो हैं, लेकिन वो योग की साधारण स्थिति है। बाबा की याद में हम कर्म करते हैं। चलो सारा समय बुद्धि नहीं भी रहती है तो भी जब हम कर्म शुरू करते हैं तो भी हम बाबा को याद करके ही करें। अगर नहीं अभी तक हमने ये अपना अभ्यास डाला है तो भी हमें ये अभ्यास तो जरूर करना है कि कोई भी कर्म करते समय पहले बाबा को सौंप दें, बाबा आपका कार्य है, आप करा रहे हैं। और फिर जब हम योग में बैठते हैं उस समय हम अपनी पावरफुल स्टेज बनाकर और फिर ये हम सेवा करें। मानो कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, हमारे दिल्ली में कई बार बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं, माउंट आबू में यहाँ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सम्मेलन होते हैं, या और भी कोई बड़े शहरों में जब कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहां पर विशेष व्यक्ति आते हैं, जैसे कभी प्रेसिडेंट आते हैं या वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर और भी मिनिस्टर आते हैं, कोई विदेश के भी आते हैं, समय प्रति समय ऐसे अपने कार्यक्रम होते रहते हैं, तो हम सब तो साकार रूप में तो हाजिर नहीं होते ना। कोई विशेष आत्माएं ही जो जिन आत्माओं की सेवा होती है वो हाजिर होते हैं उस कार्यक्रम में, तो हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? अपने स्थान पर बैठे हुए बाबा के कार्य में मेरा मनसा सहयोग रहे। तो हम सूक्ष्म रूप में तो उपस्थित हो सकते हैं ना, स्थूल रूप में चलो बंधन होता है संख्या का कि इतने जा सकते हैं इतने नहीं जा सकते, पर सूक्ष्म में कोई बंधन होता है? बाबा कई बार हमें कहते हैं बच्चे अव्यक्त मिलन मनाने में कोई बंधन नहीं। साकार में भी जब बाबा मिलन होता है तो अभी भी रोकते हैं, अब भले बाबा नहीं आ रहे हैं साकार तन में लेकिन फिर भी स्थान की सीमा है तो भी तो संख्या का बंधन होता है ना कि भाई इतने आ सकते हैं इतने नहीं आ सकते हैं। लेकिन बाबा के साथ वतन में हमें मिलन मनाना है तो सारा का सारा ब्राह्मण परिवार आ जाए तो बाबा तो भी मिलन मना सकते हैं। तो मुझे याद है एक बार जब हम बाबा के सामने बैठकर मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने मुरली में कहा था कि समय आएगा कि अव्यक्त स्थिति के द्वारा ही हम साकार मिलन का अनुभव करेंगे। अभी तो बाबा साकार में आते हैं हमें अव्यक्त बनाने के लिए। बाबा ने साकार तन का आधार लिया, चाहे ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया, चाहे दादी के तन का आधार लिया, तो किस लिए? कि हमें अव्यक्त स्थिति का बाबा अनुभव कराए। लेकिन बाबा ने कहा था कि वो समय आएगा जब स्वयं अव्यक्त स्थिति में होंगे और अव्यक्त बाबा से जैसे साकार में हम मिलते हैं ऐसा अनुभव करेंगे। तो इतनी पावरफुल हमारी स्थिति हमें बनानी है कि हम अव्यक्त बाबा से, जो वतन में हमारा मिलन होता है वो कैसा होता है, आज हम संदेशी से सुनते हैं ना, आप वतन में जाते हैं योग करते हैं सूक्ष्म वतन में और परम धाम में ही हम बाबा को याद करते हैं, तो वो मिलन कैसा होता है? बाबा के समान ही हमें स्वरूप बनाना है तभी हमारा मिलन का अनुभव होगा। मैं देहधारी हूं और शिव बाबा तो सूक्ष्म है और निराकार है, हम राजयोग सिखाते हैं तब क्या कहते हैं, तार से तार जुड़ेगी तब करंट पास होगी। आत्मा समझकर हम परमात्मा को याद करेंगे तब हमारा संबंध परमात्मा के साथ होगा। देह समझकर तो हम भक्ति करते ही आए ना आज तक, तो क्या संबंध बना भगवान से? नहीं बना ना। तो समान रूप बनाना है। तो वहां की जो भाषा है, बाबा की भाषा क्या है, वहां पर कौन सी भाषा है? भाव और भावना की भाषा, संकल्प की भाषा है। साकार लोग जैसा वहां पर बोलचाल नहीं है, तो वतन में जब संदेशी भी जाती है तो कैसे बात करती है? बाबा के संकल्पों को कैच करती है और पूरा मैसेज समझ में आ जाता है। तो संकल्प की भाषा यानी भाव को समझ लेते हैं, नैनों की भाषा से समझ लेते हैं, तो ये सूक्ष्म कैचिंग जिसको हम कहते हैं और सूक्ष्म टचिंग। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंत समय में यही अव्यक्त स्थिति जब हमारी होगी तो बाबा जो हमें टचिंग देना चाहते हैं वो हम कैच कर पाएंगे ना, वो हमारी लाइन क्लियर होगी और हमें समय से पहले ही इशारा मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। और अगर हमें सेफ रहना है तो वो सेफ होने का इशारा भी हमें मिल जाएगा, लेकिन वो चाहिए बहुत काल का अभ्यास। ऐसे नहीं अंत में हम हो जाएंगे। अव्यक्त स्थिति क्या होती है वो तो हमें पता है ना, तो अंत में हम बना लेंगे तो बन जाएगी। मनसा के लिए भी बाबा कहते हैं ना कि मनसा का भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए और उसके लिए विशेष दो पावर की आवश्यकता है। एक पावर है समेटने की शक्ति, तुरंत समेट लेना, सब तरफ से अपने आप को न्यारा करना माना क्या, समेट लेना। जैसे कछुआ, आज बाबा ने याद किया ना, कछुए के समान भी अकल, आज की मुरली में पॉइंट था ना बाबा का, तो कछुए का भी क्या क्या विशेषता है, कार्य किया और तुरंत अपने को विड्रॉ कर लिया। विस्तार को एकदम सार में चाहिए तो विस्तार में आए और तुरंत अपने आप को फुल स्टॉप में ले आए, तुरंत आत्मिक स्थिति में, अपनी निराकारी अव्यक्त स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, विदेही स्थिति में। और संसार में है, कर्म कर रहे हैं तो कर्म में भी आ गए। तो ये शक्ति समय पर काम करे। बाबा इसीलिए कहते हैं कि लास्ट समय की जो परिस्थितियां होंगी वो हमें बहुत हलचल में लाने वाली होंगी, माना हमारी बुद्धि को खींचने वाली होंगी, लेकिन उस अवस्था में भी अचल अडोल एकरस रहना। अचल अडोल एकरस रहेंगे तो हम अपने आप को न्यारा कर पाएंगे, और नहीं तो कोई ना कोई बंधन खींच लेगा। तो फरिश्ता माना क्या, सर्व रिश्ते एक बाबा से, एक बाप दूसरा ना कोई। सबसे ज्यादा बंधन होता है मोह का, इसीलिए अंतिम पेपर क्या है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। कौन बांधेगा, कौन खींचेगा, किससे न्यारा सहज होना है तो नष्टो मोह माना माताओं में वैसे भी कहते हैं कौन सी चीज, कौन सा विकार सबसे ज्यादा होता है, मोह का विकार। ऐसे लगता है कि हम बाबा के ज्ञान में आए तो नष्ट मोह आ गए, लेकिन ये जो रगे होती हैं ये बहुत सूक्ष्म होती हैं, वो पता नहीं चलता है। कई बार बाबा कहता है कि बेटों में इतना नहीं होगा लेकिन पुत्रों धोत्रों में मोह होता है, तो कहीं ना कहीं मोह पति में होगा या जिसको भी मेरा समझते हैं। अब धन संपत्ति की भी बात होती है व्यक्ति की, तो अब हमने तो कहा तन मन धन सब कुछ तेरा, तो धन के भी इतने ट्रस्टी हैं हम कि मानो अचानक बुलावा आ जाए, अचानक जाने का समय आ जाए तो बुद्धि न जाए उसमें, इतना है अभी इसका क्या होगा। बाबा ने कहा ये संकल्प भी आया तो इतना डिटैच है हम, क्योंकि इंसान इसके पीछे इतनी मेहनत करता है, जीवन भर मेहनत करता है, और फिर एक क्षण में जब जाने का समय आता है तो सब कुछ क्या करना होता है। तो वो पहले से ही हम, जिसको जैसे आर्मी होती है ना, आर्मी और मिलिट्री होती है, वो क्या करते हैं, मोक ड्रिल करते हैं। मोक ड्रिल का मतलब होता है सचमुच युद्ध लड़ने से पहले आर्टिफिशियल माना, जैसे क्या बोलते हैं उसकी, वो नकल करना, मतलब वो वाला युद्ध लड़के देखना कि सचमुच हम युद्ध लड़ पा रहे हैं। तो आपस में ही अपनी ही सेना में कोई दुश्मन बन जाता है और कोई अपना देशवासी बन के, और वो युद्ध लड़के देखते हैं, माना उसका वो अभ्यास करते हैं कि हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं वो बराबर काम कर रहे हैं, या हम जो बराबर हथियार चला पा रहे हैं, तो इस तरह से वो युद्ध के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। तो बाबा भी यही कहता है कि जब सचमुच प्रैक्टिकल में वो पेपर हमारे सामने होंगे, उसमें हम पास हो जाएं, उसके पहले हमें क्या करना होगा, इस तरह का अभ्यास। हम भी तो रूहानी मिलिट्री है ना, तो हमें अभी से वो अभ्यास करके देखना है, अगर ऐसी स्थिति हुई तो क्या मेरा मन न्यारा हो सकेगा? या कोई बाबा कहता है चलो लोहे के पिंजरे तो आपने छोड़ दिए, लोहे की जंजीरें तो छूट गई, लेकिन सोने की जंजीरें खींचती हैं। या वो हम कहते हैं सोने की चेन, जंजीर नहीं कहते उसको, है ना, उसमें उससे मोह, उससे आकर्षण नहीं छूटते। जैसे सीता का एग्जाम्पल देते हैं कि सीता का क्या हुआ, सोने के हिरण, महल छोड़कर आ गई राम के साथ, बुद्धि कहां चली गई, वो सोने का हिरण ने कहां पहुंचा दिया उसको, रावण की कैद में, है ना। तो इतना सब तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्या रह जाता है, वो सोने की चेन का आकर्षण हमसे नहीं छूटता। तो कई बार बाबा कहते हैं कि लौकिक संबंधों में मोह टूट जाता है, अलौकिक परिवार में, तो ये जो हमारा दैवी परिवार है इसमें भी अगर हमारा कहीं लगाव झुकाव है तो वो सोने की जंजीर है। तो फरिश्ते माना जो अलौकिक परिवार के देह के रिश्तों में भी नहीं आते, उनसे भी न्यारे, किसी भी प्रकार का लगाव स्वभाव मुझे बंधन में न बांधे, सभी रिश्ते एक बाबा के साथ, ये अपनी चेकिंग करनी है। कहने में अच्छा लगता है एक बाबा ही मेरा संसार है, पर क्या सचमुच बाबा ही मेरा संसार है, या बाबा भी है फिर साथ साथ में थोड़ा थोड़ा ये भी है, थोड़ा दिल की बात करने के लिए कोई तो चाहिए, दिल हल्का करने के लिए कोई तो चाहिए, तो एक साथी जरूर बना लेते हैं किसी ना किसी को, इसके बिना नहीं चलता मेरा, बाकी तो सब ठीक है लेकिन बस एक। तो बाबा कहते हैं वो एक ही धोखा दे देगा, जिस एक को आप अपना समझ रहे हो, समय आने पर क्या होता है दुनिया में, यही होता है ना, अगर निभाने वाले होते हैं, साथ निभाने वाले होते हैं, ऐसा मानते हैं ना कि हाँ ये हमारा साथ हमेशा निभाएंगे, पर सचमुच ऐसा होता है कि जब आपको उनका साथ चाहिए होता है वो होते ही नहीं है, है ना, उनकी कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि वो अपने में ही उलझे होते हैं और आपके साथ कोई और ही होते हैं जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं होता है। तो बाबा तो कभी भी कहीं भी हमारे लिए हाजिर है। बाबा कहते हैं कहो मेरा बाबा आ जाओ, दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा आपके लिए हुजूर हाजिर है, और आप अनुभव करेंगे, यूज करके देखो, जब बाबा ने हमें ऑफर किया है तो हम यूज करें ना समय पर बाबा को, और ऐसे बहुत वंडरफुल अनुभव बाबा के बच्चों के होते हैं कि जब वो बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो बाबा कैसे मदद करता है। एक बार एक माता ने हमको अनुभव सुनाया कि वो रात को सेंटर पर सेवा में थी, कोई प्रोग्राम था सेंटर पर, तो सेवा में देर हो गई, 12 बज गए, अब उसको घर जाना जरूरी था, बहन ने तो बोला कि तुम रुक जाओ, रात यहीं रुक जाओ, अभी बहुत रात हो गई, अभी घर जाना ठीक नहीं है, पर उसने कहा कि नहीं, पति की तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाना जरूरी है, सुबह उनको सब उनके लिए सब कुछ करना होता है। तो फिर कहा बाबा तो है ना, तो बाबा को याद करके मैं चली जाऊंगी, तो उसने ऐसे ही किया, निकलते ही बाबा को संकल्प दे दिया कि बाबा मैं जा रही हूँ, अब नेचुरली रात को ऑटो करके अकेले जाना तो इतना सेफ नहीं होता है, तो ऐसे उसने बाबा को बोला कि बाबा आप मेरे साथ हो और मुझे ले चलो घर। बैठ गई वो ऑटो में, ऑटो को बुलाया, ऑटो में बैठ गई और ऑटो वाले ने उसको सीधा सीधा घर छोड़ दिया, थोड़ा था 4-5 किलोमीटर, और वहां उतारा तो ऑटो वाले ने उस ऑटो वाले को पैसे देने लगी, तो ऑटो वाले ने बोला कि आप अपना एक का किराया दे रहे हो लेकिन यहाँ ऑटो में तो 2 लोग बैठे थे, 2 का किराया चाहिए। तो उसने कहा कि कौन 2, मैं तो अकेली ही बैठी थी। उसने कहा नहीं, आपके साथ एक बुजुर्ग भी बैठे थे। तो कौन दिखा उसको, तो बाबा ने अपना साथ निभा दिया ना, उसने बाबा के ऊपर छोड़ा तो बाबा ने उसको अनुभव करा दिया कि ये अकेली नहीं है, इनके साथ कोई है। तो जब हम सचमुच बाबा को यूज करते हैं तो बाबा ऐसे वंडरफुल अनुभव हमें कराते हैं। तो हम फरिश्ता बने, अब स्वयं भी हल्के रहें, फरिश्ता बनना ही माना लाइट बनना, लाइट स्वरूप बनना, तो जो भी हमारे संपर्क में आए वो भी हमसे मिलकर हल्का हो जाए, यानी वो भी फरिश्ता बन जाए, उनके मन की स्थिति भी इतनी हल्की हो जाए, वो भी लाइट हो जाए, उनके बोझ भी सारे खत्म हो जाए। इसको हम कहेंगे सही मायनों में हम अभी भी फरिश्ता हैं, और फिर फरिश्ता बनकर के हम विश्व की आत्माओं की भी अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, योग का समय
जी। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि अभी हमें और एक घंटा बैठना है, तो थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएंगे। अगर कोई खड़े होकर हाथ पैर स्ट्रेच करना चाहे तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको एक घंटा एकदम पावरफुल लाइट माई स्थिति में स्थित होकर प्रकाश देने की सेवा करनी है ना। तो दीदी आप रहेंगे ना आधा घंटा? जी जी, दीदी भी हमारे साथ रहेंगे। तो अभी हम सब फिर से बाबा की याद में बैठेंगे।
ले चले मन को इस व्यक्त लोक से अव्यक्त लोक में। मैं आत्मा स्वयं को सूक्ष्म वतन में अपने सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर में अनुभव कर रही हूँ। और प्यारे बाबा को भी मैं लाइट के आकार में देख रही हूँ। बाबा के नैनों से मेरे प्रति असीम स्नेह मैं अनुभव कर रही हूँ। रूहानी स्नेह बाबा का प्यार मुझे बाबा के अति समीप अनुभव करा रहा है। बाबा के स्नेह में मैं समा गई हूँ। बाबा ही मेरे सब कुछ है, सर्व संबंधी है। मेरे सर्व रिश्ते एक बाबा से हैं और मैं सर्व संबंधों का प्यार बाबा से पा रही हूँ। ब्राह्मण जीवन में मैं बाबा आपकी पालना में ही पल रही हूँ। आपने मुझे अपनी सर्व प्राप्तियों का अधिकारी बनाया है। आप ही मेरे परम शिक्षक हैं। मुझे तीनों कालों का तीनों लोकों का ज्ञान देकर मेरे ज्ञान के अंतर चक्षु मेरा तीसरा नेत्र बाबा आपने खोला है। ये सत्य ज्ञान ही मुझे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कराता है। ज्ञान मुरली सुनकर मैं आत्मा इंद्रिय सुख का अनुभव करती हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के दुख अशांति समाप्त हो गई है। मेरी सब समस्याओं का हल बाबा आप कर देते हैं। आप ही मेरे सद्गुरु हैं। आपके वरदानों से मैं उड़ती कला का अनुभव करती हूँ। बाबा आप ही मेरे सच्चे साथी हैं। सदा हर पल हर घड़ी मैं जब आपको याद करती हूँ, आपके साथ का अनुभव मुझे होता है। आप ही मेरी मुश्किलों को आसान करने वाले हैं। मेरी सारी जिम्मेवारियों का बोझ, मेरी सब चिंताएं हरने वाले हैं। और आपने मुझे फरिश्ता बना दिया है। डबल लाइट, लाइट हाउस, माइट हाउस बनाया है। मैं बाबा के साथ विश्व की सेवा पर हाजिर हूँ। महसूस करें बाबा मेरे द्वारा समस्त विश्व की आत्माओं को वतन से सकाश दिलवा रहे हैं। मैं अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा, फरिश्ता स्वरूप के द्वारा पूरे विश्व का चक्कर लगा रही हूँ। आज विश्व की जो भी आत्माएं कष्ट में है, दुख में है, उन्हें शिव बाबा से, शांति के सागर से, सुख के दाता से अपना अधिकार मिले, मैं उन्हें शांति के, सुख के वाइब्रेशंस उन आत्माओं को जिन शक्ति की आवश्यकता है बाबा के द्वारा उन्हें अनुभव हो, ये मेरी शुभ भावना है। कुछ समय के लिए पूरे ग्लोब को इमर्ज करके विश्व की आत्माओं को जिसको जो चाहिए भगवान से उसे वो प्राप्ति हो, हम ऐसी सकाश दे रहे हैं। मेरे समस्त विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना है बाबा से उन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिले। वो अपने पिता को पहचाने, बाबा ने इस कार्य के निमित्त मुझ आत्मा को सहयोगी बनाया है। मैं परमात्मा की मैसेंजर हूँ। मैं अपने अंतर्वाहक शरीर के द्वारा अब उन स्थानों पर जो परमात्मा की याद के स्थल हैं, भक्ति के स्थान हैं, जहाँ भक्त भगवान को पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनके प्रति बाबा के द्वारा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हैं।